ते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु महाराज की असीम कृपा है। थोड़ा सा आवाज आप कम कर सकते, थोड़ा सा गुरु महाराज की असीम कृपा है, इसलिए हम लोग सब इस जयवर कुंड में बैठे हुए हैं। आपके ऊपर वहां पर मोर कुटी है, दिखाई पड़ रहा है आपको सबको, सफेद रंग की जो बिल्डिंग है, इस जगह पर जो दिख रहा है दाहिने साइड में वो मान मंदिर है। आपके पीछे रस कुंज है, आपके सामने गहवर कुंड है और नीचे रस मंदिर है, यहाँ पर आपके भोजन की व्यवस्था है। तो इतना सुंदर जो वातावरण है वो किसी भी कीमत पर हमारे शहरों में घरों में निर्माण नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम हाथ जोड़कर अपना धन्यवाद कृतज्ञता भाव व्यक्त करेंगे। सब लोग हाथ जोड़कर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद करना भगवान का, राजा रानी का, संतों का, गुरु महाराज का। हमें ये अनोखा क्षण हमारे जीवन में, अनोखा प्रसंग, अनोखा संग हमको यहाँ प्राप्त कर दिया है। तो हम लोग अभी बरसाने के चिकसोली गांव में हैं। वो चिकसोली गांव चित्रा सखी का है, चित्रलेखा देवी, और राधा रानी का मंदिर जहाँ से होता है ना शुरू, वहाँ से लेकर ये पूरा चिकसोली गांव समाप्त होने तक जितना भी जगह है, जितना भी क्षेत्र है, जितने भी वन है, उसको गहवर वन कहते हैं। खोर, खिरक, गिरी, गहवर, ऐसे चार चीजें ये बरसाने का विशेषत्व है। यहाँ पर छोटी सांकरी गली है, यहाँ पर बहुत सारे जलाशय हैं, यहाँ पर सुंदर पर्वतों की शिखर है और यहाँ पर गहवर वन है जो बरसाने का हृदय है। ये जो गहवर वन है वो राधा रानी ने अपने हाथ से बनाया है, अपने हाथ से बनाया है। इसमें सारे पेड़ पौधे बेली अपने हाथों से लगाई है और सब व्यवस्था यहाँ पर कमान की है, कमनीय है, उसमें वेलियाँ बह रही है और राधा कृष्ण यहाँ पर बड़े प्रेम से प्रवेश करते हैं। गहवर वन में राधा रानी के स्वयं हाथ से बना हुआ वन होने के कारण कृष्ण को बड़ा प्रिय है और यहाँ पर कोयल गूंजती है, मोर नाचते हैं और राधा और कृष्ण की अंतरंग लीला होती है। ये बहुत गुप्त स्थान है, वहां पर उधर पत्थर पे भी मंत्र लिखा हुआ है। गंधर्वों को भी यहाँ पर आनंद प्राप्त होता है, देव देव ऋषि सब यहाँ पर आनंद प्राप्त करते हैं, और सबके लिए रमणीय स्थान है, हृदय को शुद्ध करने वाला है, लोक का दिव्य आनंद प्राप्त कराने वाला ये स्थान है। और वैसे तांत्रिक दृष्टि से देखा जाए तो ये ब्रह्मा का नाभि स्थल है। अगर ये ब्रह्मा के चार सिर हैं तो गैबर कुंड जो ब्रह्मा की नाभि समझा जाता है, ये गैबर कुंड, उसको राधा सरोवर भी कहते हैं, कृष्ण कुंड भी कहते हैं, जो भी कह लो। इसमें राधा रानी अपने गिने चुने 64 सखियों के साथ रोज स्नान करती है। तो ये साक्षात राधा रानी का चरणामृत है, अंग का अमृत है, उनका अंग स्पर्श यहाँ पर हो चुका है, बहुत दिव्य जल है वो। बाहरी दृष्टि से आपको लगेगा ऐसे है वैसे है, लेकिन जो श्रद्धालु है उनके लिए ये पता होना चाहिए कि ये सबसे पवित्र और दिव्य जल है, जिसके स्पर्श मात्र से अनंत जन्म के संचित नष्ट हो सकते हैं। तो मैंने कहा, पहले कहा था कि ये चित्रा सखी का गांव है, तो बरसाना जो है ये कमल की तरह है एक क्षेत्र यहाँ का, और कमल के बीच में जो जगह है उसको क्या हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वर्ल ऑफ द लोटस, जो बीच में जगह होती ना उस पर बरसाना है। और जो प्रमुख पहले 8 पंखुड़ियाँ हैं वो 8 गांव हैं सखियों के, गोल चारों तरफ गोल, और उसमें चिकसोली चित्रा सखी का गांव है जिसका संस्कृत नाम है चिकित्सापुर, चिकित्सा वन। इसमें धर्म भानु की पुत्री के रूप में यहाँ पर चित्रा सखी का जन्म हुआ। चित्रा सखी की बहुत सारी विशेषताएं हैं। चित्रा सखी पंछियों की भाषा जानते हैं, वृक्षों की भाषा भी जानते हैं, और वृक्षों को संवारने में बहुत कुशल है वो, वृक्षों को रखने में मेंटेन करने में बहुत ही उनका विशेषता है, और पंछियों की भाषा वो समझती है, इसलिए पंछियों को भी ट्रेन करती है राधा रानी के और कृष्ण भगवान की लीला में कैसे सहभाग लेना है, हाउ टू पार्टिसिपेट फेवरेबली, इस तरह से वो चित्रा सखी। साथ साथ में धर्म भानु जो उनके पिताजी हैं वो भी बड़े विद्वान हैं धर्म के शास्त्र में, इसलिए वो भी स्वयं पंडिता हैं, धर्मशास्त्र जानती है, हस्त समुद्र समुद्र होता ना फार्मिस्ट्री, उसमें भी बहुत कुशल है, ज्योतिष शास्त्र में भी कुशल है, और विशेष रूप में चित्रपट कला में भी कुशल है बहुत। नाम ही चित्रा सखी है तो उनका चित्रपट लीला, एक समय पर श्रीदामा प्रभु जो श्रीदामा जो है ना कृष्ण के सखा है वो, तो श्रीदामा वो मानसी राजे का आप जरा ऊपर बैठो माता जी को इतना झुकने मत दो, यू सीट अप, सो टू मेक हर वेरी कंफर्टेबल एंड ट्रांसलेट फॉर अस। तो चित्रा सखी बहुत सुंदर चित्रपट कला है उसके अंदर। तो श्रीदामा जो है वो तो राधा रानी के बड़े भाई हैं, और वो कृष्ण से इतने प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि वो कृष्ण के बिना रह नहीं सकते, रात रात जागते रोते हैं। तो एक दिन उनको बहुत ऐसा दुख हुआ, उन्होंने कहा कि हे नंदलाल हे गोपाल, आपके बिना मैं रह नहीं सकता और मैं मर जाऊंगा, आपके विरह में मुझे रात को नींद नहीं आती, क्योंकि संध्या के समय इस समय गौचारण समाप्त होता है, ग्वाल बाल चले जाते हैं अपने घर, तो सुदामा को और सबको बहुत दुख होता है, सुदामा को बहुत ज्यादा दुख होता है। तो एक दिन रो को कृष्ण से कहा उन्होंने कि कम से कम आपका एक चित्रपट दिला दो मुझे, तो आपके चित्रपट को देखते हुए मैं अपने आप की सांत्वना कर लूंगा। तो कृष्ण अपनी माता के पास गए और कहा, माता मेरा एक मित्र है बहुत रोता है और वो कहता है मैं मर जाऊंगा, आप कृपा करके मेरा एक चित्रपट बना दो। तो सुदामाई भी थोड़ा हल्के मूड में थी, लाइट मूड जोकिंग मूड, वो कहते उसमें क्या बड़ी बात है, एक कागज ले लो एक ब्रश ले लो एक काला रंग ले लो दो चार स्ट्रोक मारो हो गया आपका चित्रपट, उसमें क्या है। तो कृष्ण को बहुत कृष्ण गंभीर थे इस विषय में, क्योंकि जिस प्रकार से रोकर सुदामा चले गए थे तो बहुत कृष्ण गंभीर थे। तो कहते मैया आप ऐसे मजाक मत करो, मेरा दोस्त इतना दुखी है और आपको मजाक सूझ रहा है। तो यशोदा रानी भी गंभीर हो गई, उन्होंने कहा ठीक है ठीक है। तो वो चित्रा सखी को बुलाती है, चित्रा सखी को बुलाने से चित्रा सखी अपने आप को बड़ी धन्य मानती है, यशोदा देवी बुला रही है, यशोदा देवी कुछ काम से सेवा से बुला रही है, इतना भाग्य है मेरा। तो यशोदा देवी कहती है कि कृष्ण का चित्रपट बनाना है, तो बड़ी खुश हो जाती है कि यशोदा देवी की तरफ से कुछ सेवा प्राप्त हुई। तो वह तुरंत जाती है और चित्रपट निकालने के लिए सब तैयारी करके चित्रपट निकालने के लिए बैठ जाती है। तो क्या करती है कि मन में अपने श्री कृष्ण का एक यादगार छवि स्थापित करके उस पर चिंतन करके चित्रपट निकालना चाहती है। आप देखा है ना कभी चित्रपट जो होता है ना, चित्रकार कैसे होता है, जो आपका चित्रपट निकालना है लाइव, तो आपको एक जगह बिठाएंगे, बोलेंगे ऐसा ऐसा ही बैठो, हिलो मत, उधर देखो हिलो मत, तो आपकी एक फिक्स पोजीशन चाहिए उसको। अगर आप मूविंग रहेंगे तो कैसे निकालेंगे चित्रपट, एक जगह फिक्स करेंगे ना आपको, फिर चित्रपट निकालेंगे, बार बार देखते रहेंगे आपको निकालते रहेंगे। तो वैसे वो मन में एक चित्रपट भगवान की छवि जो है ना वो फिक्स करना चाहती है मन के पटल पे, और फिर निकालना चाहती है। तो जब वो ध्यान में बैठी कि कौन सी छवि पकड़ू, तो उसके मन में एक साथ अनंत कृष्ण की छवियां प्रकट हो गई, अनंत। कभी कुछ छद्म कर रहे हैं, कभी कुछ हंस रहे हैं, कभी कुछ गा रहे हैं, कभी कुछ और चेहरे का कर रहे हैं, ऐसे अनंत प्रकार की छवियां उनके मन में प्रकट हो गई। और एक किसी चित्र की छवि पर वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाई, कोई एक छवि मन में स्थापित नहीं कर पाई। तो कई देर तक प्रयास किया लेकिन एक भी छवि उधर स्थापित नहीं हो पाई, तो बड़ी दुखी हो गई वो। अरे सेवा तो मिली लेकिन सेवा में शुरू ही नहीं कर सकती, तो उसने बहुत चिंतन किया कि ऐसे क्यों हो रहा है, सेवा तो मिली लेकिन सेवा कर नहीं सकती हूँ। तब उसको ध्यान में आया कि वो इतनी क्या कहते हैं ना, शी गॉट सो एक्साइटेड कि सेवा मिली तो उन्होंने राधा रानी की कृपा लेना भूल गई। राधा रानी को आकर मिली नहीं, वो बताया नहीं उनको, राधा रानी की कृपा के बिना कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते हैं, यशोदा माई की सेवा नहीं कर सकते हैं। सबकी सेवा करने के लिए कृपा राधा रानी की होनी चाहिए। वो फिर राधा रानी के पास जाती है और चरणों में गिर जाती है, क्षमा मांगती है और पूरा बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ, सेवा प्राप्त हो रही है। तो राधा रानी बड़ी प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देती है, और राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त होते ही तुरंत ही तत्क्षण उनके मन में कृष्ण की बड़ी मनमोहक एक छवि स्थापित हो जाती है, वन ब्यूटिफुल क्या कहते हैं उसको, सुंदर सी छवि मन में स्थापित हो जाती है। और फिर वो तुरंत उस मन में बची हुई छवि को चिंतन करते हुए वो चित्रपट निकालती है। तो चित्रपट पूरा करके चित्रा सखी नंदगांव जाती है और यशोदा माई को देती है। यशोदा माई वो चित्रपट जो है वो कृष्ण को देते हैं, और कृष्ण जो वो चित्रपट श्री रामा को देते हैं, और श्री रामा उसको रात भर देखते रहते हैं और कुछ कुछ हद तक सांत्वना अपने आप को कर लेते हैं। पूरा सांत्वना नहीं हो सकती, साक्षात कृष्ण का संग जिसको है वो चित्रपट से कितनी सांत्वना लेंगे। तो चित्रा सखी यही गांव में रहती है, हमारे अस्पताल की जो भूमि है वो भी चित्रा सखी के गांव में है। तो इसलिए अर्द्वेश नर्तकी माता जी और उनके बहुत प्रयास के वजह से चित्रा सखी का विग्रह अभी आ गया है, लेकिन अभी प्रकट होने का समय है अभी थोड़ा। चित्रा सखी का विग्रह भी राधा और श्याम सुंदर जी के दाहिने बगल में आएगा और उनकी सेवा की जाएगी, क्योंकि चित्रा सखी के गाँव में अगर हम अस्पताल बना रहे हैं तो चित्रा सखी का भी वहाँ पर आशीर्वाद सेवा होनी चाहिए। तो इसलिए चित्रा सखी का विग्रह प्रकट हो चुका है, लेकिन आप लोगों के सामने प्रकट अब तक नहीं हुआ है। आप लोग प्रार्थना करो कि जल्द से जल्द उनके प्रकट होने की व्यवस्था हो जाए, आप सब लोगों को उनका दर्शन प्राप्त हो। तो ये बरसाना धाम जो है वो कृष्ण का बहुत ही अंतरंग धाम है, ये मान मंदिर है। यहाँ पर ये चौथा ब्रह्मा जी का शीश है और इस शीश पर बहुत विशेष लीला होती है। यहाँ पर राधा रानी मान करती है और मान कर कृष्ण के प्रेम को बढ़ाती है। वो तो मान जो है ना उसको थोड़ा समझना ज़रूरी है, उसका वर्णन करने के पहले। इसको हम अपनी भाषा में दुनिया में क्रोध समझते हैं ना, वो आध्यात्मिक विश्व में उसको मान के रूप में उसका वर्णन होता है। और क्रोध में और मान में अंतर होता है। क्रोध हम स्वार्थ के लिए करते हैं, जब हमारी कोई स्वार्थी इच्छा नहीं पूर्ण होती है तो हम क्रोध करते हैं, क्यों नहीं पूर्ण हुई, कैसे नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, होनी चाहिए, इस भाव से हम लोग क्रोध करते हैं। लेकिन मान का भाव इससे पूर्णता से विरुद्ध होता है। मान जो है वो केवल कृष्ण की प्रीति को और बढ़ाने के लिए होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं बार बार इस बात को बताता हूँ कि श्री कृष्ण लीला के श्रवण में एकाग्र होना कितना मुश्किल है ना। कभी कोई है, कभी कोई है, कभी बंदर है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। अपने ध्यान को भगवान के ध्यान से हटाने के लिए यहाँ की माया की बहुत व्यवस्था है, लेकिन जब तक आप नहीं चाहते हो तब तक माया की व्यवस्था आपको प्रभावित नहीं कर सकती। जैसे एक शराबी आया साधु के पास और बोलने लगा, महाराज शराब छोड़नी है, शराब छोड़नी है। तो महाराज छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। फिर आया अगली बार, बोला मैं शराब छोड़नी है, शराब छोड़नी है, शराब छूटती नहीं महाराज, कृपा करो, कोई आशीर्वाद दो, शराब छूटे। बहुत बार आया वो, महाराज ने कहा छोड़ दो। तो एक दिन जब लास्ट बहुत बार आया और कभी भी शराब पी रहा है, तभी भी आया, तो जैसे ही आया ना तो महाराज जी आते ही वहां से भागे और कुटिया के बाहर गए और एक पेड़ था उसको ऐसे लिपट गए और जोर जोर से बोलने लगे, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे पेड़ से छुड़ाओ, मुझे पेड़ से छुड़ाओ। तो शराबी बोला, अरे महाराज क्या पागल हो गया, आप खुद को खुद नहीं उसको पेड़ को पकड़ के रखा है और खुद ही बोल रहे छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, तुमने ही शराब को पकड़ के रखा है और तुम ही कह रहे हो छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ, तुम्हारे ही हाथ में है। तो माया को जब तक आप नहीं पकड़ते तब तक वो आपको नहीं पकड़ती। जो कृष्ण को पकड़ लेता है उसको माया नहीं पकड़ सकती। कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। जहां कृष्ण है वहां माँ का कोई, माया का कोई स्थान नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन जब हम कृष्ण को भूल जाते हैं, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धोरे। बहुत सुंदर पावरफुल श्लोक है बंगाली। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, कृष्ण को भूलकर हम लोग इधर उधर मन को भटकाते हैं। तो क्या होता है, जैसे कृष्ण को भूलते हैं हम भोग वांछा करते हैं, हम लोग भोग इच्छा करते हैं, तो निकटस्थ बहुत पास में है वो, निकटस्थ माया तारे झपटिया धोरे, झपट के उसको पकड़ लेती। तो बंदर कुछ भी करते रहेंगे, अगर आपका ध्यान कथा में होगा तो बंदर का कुछ फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप बंदर को देखेंगे तो आपका वो ध्यान चोरी कर लेगा और उसको ही देखते रहेंगे, फिर उसमें फंसे रहेंगे, फिर पूरी कथा बीच में गुजर जाएगी, फिर आप पूछेंगे मैं कहाँ गया था बंदरों के साथ, घूम के आया, कथा समाप्त हो गई बीच में। अगर बंदर नहीं आएगा तो मन में तो बंदर है ना बैठा हुआ, वो भी आपको यहाँ वहाँ घुमाएगा, बम्बई ले जाएगा, दिल्ली ले जाएगा, कलकत्ता ले जाएगा, अपने बॉयफ्रेंड के पास ले जाएगा, गर्लफ्रेंड के पास ले जाएगा। तो बंदर बाहर ही नहीं है, अंदर भी बंदर है, मन ही खुद बंदर है। हाँ, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथी बलवत दृढ़म, इतना भयंकर ये अंदर फोर्स है अपनी, उनको हमेशा यहाँ वहां भटकाते रहता है। बस कृष्ण छोड़ के सब चीज पे भटकाएगा। बंदर कैसे होता है, एक जगह बैठता है कभी, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते, इधर उधर जाएगा, वहां से वहां, लुकिंग बिजी डूइंग नथिंग, लुकिंग बिजी डूइंग नथिंग। कितनी बिजी है, यहाँ से वहां जा रहे, उधर से उधर जा रहे, उधर जा रहे, नीचे आ रहे, ऊपर जा रहे, लटक रहे, फिर ऊपर से नीचे आ रहे, फिर नो अचीवमेंट। ऐसे हमारा मन भी ऐसा ही है, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथी बलवत दृढ़, बहुत बलवान है, बहुत दृढ़ है। प्रमाथी मतलब प्रमाद, यानी मैडनेस, कंप्लीट क्रेजीनेस से भरा हुआ है। अच्छा है, बीच में आपने थोड़ा बंदर को देखा, थोड़ा मुझे भी फिलोसॉफी याद आया ना बहुत सारा। तो कहने का तात्पर्य है कि इतना सुंदर वातावरण है, उसमें अपने ध्यान को इस सुंदर दृश्य से विचलित मत होने देना, क्योंकि इसी जगह पर राधा रानी स्नान करती है, इसी जगह पर कृष्ण ने राधा रानी का श्रृंगार किया, राधा रानी ने कृष्ण का श्रृंगार किया। बहुत देर तक गहवर वन में बैठे हुए उन्होंने एक दूसरे का एकांत में बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया। जब श्रृंगार पूर्ण हुआ तो राधा रानी ने कहा कि मेरे श्रृंगार का वर्णन करो, प्लीज डिस्क्राइब माई श्रृंगार। तो कृष्ण ने देखा इधर उधर, कैसे कोई आसपास में वस्तु है जो उनकी तुलना के बराबर है, उनकी मैं तुलना कर सकता हूँ। जब सुंदर कोई कोई सौंदर्य का वर्णन करते ना हम लोग, तो कहते हैं कि उनका नाक वो चंपा कली की तरह है, उनके होंठ जो है बिंब फल की तरह लाल है, उनके बाल जो है वो सांप की तरह घुंघराले हैं, ऐसे किसी किसी की तुलना करते हैं। तो उनको आसपास में कोई भी ऐसी वस्तु दिखी नहीं गई जो इतने सौंदर्य की तुलना कर सके, बराबरी की हो। तो फिर उन्होंने आकाश में देखा तो उनको चांद दिखाई पड़ा, पूर्ण चंद्रमा जो है बहुत सुंदरता से आकाश में शोभा पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आपका मुखमंडल चंद्रमा की तरह है। अगर ये यहाँ पर कितनी औरतें बैठी हैं, तो पति देव ने कहा कि आपका मुख चंद्रमा की तरह है, आप बोलेंगे क्या बनाऊं, आज मिठाई बनाऊं कि जलेबी बनाऊं कि पकौड़े बनाऊं, क्या बनाऊं, क्या इच्छा है बताओ आप, मैंने खुश हो जाएंगे आप। ऐसे उम्मीद है ना आपको, अगर कोई चंद्रमा के मुख की तुलना करेंगे तो आप कितने खुश हो जाएंगे, उम्मीद है कि आप खुश हो जाएंगे। लेकिन राजा रानी खुश नहीं हुई, राजा रानी को क्रोध आया, मतलब मान आया। उन्होंने कहा कि चांद में कितने दाग हैं, हमारे सौंदर्य में कोई दाग नहीं है, कोई दोष नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, चंद्र जो है वो क्षीण होता है, एक दिन अदृश्य हो जाता है अमावस्या को, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। सौंदर्य में क्या होता है, क्षीण होता है, क्षय होता है उसका, चंद्र का। अभी देखो पूर्णिमा हो गई, माघी पूर्णिमा, अभी देखो धीरे धीरे कम कम होते जाएगा, उसके भी एक लंबी कहानी है, अभी नहीं बताऊंगा आपको। चंद्र ने भी अपराध किया था ब्रह्मा जी की पत्नी का, तो श्राप दिया गया उनको कि आप क्षय होकर मर जाओगे। तो चंद्र ने जाकर शिव जी का आश्रय लिया था, तो शिव जी ने उनको पना दिया और उनको एक्चुअली टीबी हो गया था, राज यक्ष्मा। तो चंद्र ने, चंद्र को शिव जी ने आश्रय दिया, इसलिए उनका नाम पड़ा चंद्र मौलेश्वर महादेव। और चंद्र ने चंद्र को ठीक भी किया और वरदान भी दिया कि तुम, ये तो श्राप मिला है उससे तुम मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन जब क्षय हो जाएगा तो पुनः 15 दिन आपकी वृद्धि हो जाएगी। तो 15 दिन का क्षय, वो श्राप लागू है और वरदान भी लागू है, 15 दिन की वृद्धि। तो ये क्षय वृद्धि चलती रहती है। उनका जीवन जो है ना, आकाश में देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि हमारे जीवन का ही प्रतीक है वो, कभी खुशी कभी गम, कभी भूख कभी छाँव, कभी दुख कभी सुख, है ना। और वो भी देख के समझ सकते हैं कि उनकी जो काम वासना थी ना, उसके वजह से उनकी स्थिति आज कम हो रहे हैं, शून्य हो रहे हैं, फिर शून्य से वापस पूर्णिमा हो रही है, फिर वापस से पूर्णिमा से शून्य हो रहे हैं। ये जो नुकसान उनका हुआ, क्योंकि ब्रह्मा जी की पत्नी की और उनकी गलत दृष्टि पड़ी थी और उन्होंने गलत काम भी किया, ब्रह्मा जी का श्राप प्राप्त हुआ। तो प्रभुपाद जी का प्रवचन मैं सुन रहा था, उसमें प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि जब तक काम वासना है, स्त्री के पुरुष के प्रति, पुरुष को स्त्री के प्रति, नर को मादी के प्रति, मादी को नर के प्रति, तब तक आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत नहीं हो सकती है। जिस दिन हमारे जीवन में ये काम वासना के प्रति हमारी घृणा उत्पन्न हो जाएगी, उस दिन वो कहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ शुरू हो जाएगा। स्पिरिचुअल लाइफ विल बिगिन व्हेन वी विल डेवलप डिस्टेस्ट फॉर सेक्स। और चंद्र देवता भी उससे फ्री नहीं है, इसलिए आज भी चंद्र देवता की यही स्थिति है। चंद्र देवता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अनसुया के गर्भ से ब्रह्मा जी ने उनका अपना अंश दिया तो चंद्र देवता का जन्म हुआ। तो उस चंद्र का उन्होंने तुलना किया, तो उन्होंने कहा कि चंद्र का रोग क्षय होता है और फिर वृद्धि होती है, फिर क्षय होता है, फिर वृद्धि होती है। हमारे सौंदर्य में कोई क्षय वृद्धि नहीं होती है, केवल वृद्धि होती रहती है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग ब्यूटी। फिर कहा कि चंद्र देवता में और एक दुर्गुण है कि चंद्र देवता को ग्रहण लगता है, राहु कहते उसको ग्रस लेते हैं। हमारे सौंदर्य को ऐसा कोई दुनिया में फोर्स नहीं है, कोई शक्ति नहीं है ऐसी जो हमें हमारे सौंदर्य को ग्रहण लगा सकती है। तीसरी बात, अगर आपको याद रखना तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि तो बाद में शाम को आपको याद नहीं रहेगा क्या क्या बहाने बताए उन्होंने। चौथी बात बताई कि चंद्र जो है वो पर प्रकाशित है, यानी सूर्य के प्रकाश को लेकर, उधार लेकर प्रकाश देता है, खुद का प्रकाश नहीं उसका, चंद्र द्वारा प्रकाशित है, कहते हैं पर प्रकाशित है। हम स्वयं प्रकाशित हैं, हमारा सौंदर्य जो है वो स्वयं के तेज से तेजस्वी है, किसी का उधार लिया हुआ धन हमारे पास नहीं है। पर ये सब हमें मंजूर है, हम मान सकते हैं कि भाई आपको पता नहीं होगा, लेकिन एक बात जो है, जो बात हम कतई तौर पर स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रतिस्पर्धी है, राइवल कॉपी चंद्रावली, उसके आधे नाम में चंद्र है, इसलिए हम कतई तौर पर चंद्रावली के आधे नाम के साथ हमारी तुलना कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे बोलकर वो नाराज हो गई और चली गई, बहुत सुंदर श्रृंगार किया हुआ था, मान करने से और सुंदर लगने लगी, लेकिन चली गई वो छोड़कर कृष्ण को, कृष्ण उसके पीछे पीछे भाग गया अगर बन में, तो मनाने लगे माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, अभी आगे कभी भी चंद्र की तुलना नहीं करूंगा। लेकिन रूठ गई तो रूठ गई, फिर चली गई। फिर सखी आई, ललिता विशाखा सब लोग आई, मनाने का कोशिश किया लेकिन वो नहीं मानी, कृष्ण को लेकर गए, हाथ मिलाना लगाना कोशिश किया तो देखने को भी तैयार नहीं कृष्ण की। वो राधा रानी का हाथ और कृष्ण का हाथ मिलाना चाहती ललिता, लेकिन वो बिल्कुल भी उसमें इच्छा नहीं है उसको, वो रो रही है, कृष्ण भी रो रहे हैं, फिर कृष्ण चरणों में बैठ जाते हैं, वहाँ पर रोते हैं, फिर उनके चरणों में गिर जाते हैं, वहाँ पर अश्रु बहाकर उनके चरणों को धोते हैं, फिर भी वो नहीं मानती है, और ऊपर चले जाती है, और ऊपर चले जाती है, और ऊपर चले जाते हैं। आवत जावत हार गई रही, ऐसे ललिता देवी कहती है कि तुम कृष्ण के पास में आती है तो बोलते जाओ जाओ उसको मनाओ, वहां जाके मनाने जाते तो वो उसको ठुकरा देती है, फिर वापस कृष्ण के पास आती है तो वापस कृष्ण उनको भेजते जाओ उनको मनाओ, तो कहते हैं कि तुमने तो मेरी चौगान की गेंद की तरह अवस्था करके रखी है। चौगान की गेंद मतलब हमारा फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल कभी उस तरफ गोल में कभी इस तरफ, कोई अवस्थिति नहीं है, गेंद को कोई स्वतंत्र नहीं है, यहाँ लात मारेंगे तो उधर जाएगा, उधर लात मारेंगे इधर आ जाएगा, उधर लात मारेंगे उधर चला जाएगा, अपना कोई अस्तित्व नहीं है, मुझे आपने ऐसा बना के रखा है दोनों ने मिलकर, एक बोल रहा है जाओ मनाओ, बोलते ठुकरा दो। तो इसमें वो ऊपर चढ़ते 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 जैसे जा रहे हैं, वो ऊपर तुरंत सबसे टॉप पर बैठ जाती है, बहुत समय बीतता है उसके अंदर और मानने को तैयार नहीं है। फिर ललिता देवी बहुत कोशिश करती है, कृष्ण रोते हैं, चरणों में लोटपोट हो जाते हैं, अपना मोर मुकुट उनके चरणों में समर्पित करते हैं, यानी कि सरेंडर कंप्लीट, फिर भी तैयार नहीं है, देखने को भी तैयार नहीं है। फिर उसके बाद ललिता कृष्ण के कान में कुछ कहती है और इतना समय जो मनाने में लगे हुए थे तुरंत वहां से निकल जाती है, और ललिता भी निकल जाती है, और फिर राधा रानी कुछ सखियों के साथ वहीं बैठे रहती, फिर वहां पर टूट कर बैठी हुई है। तो यहाँ जो जगह है ना, मैंने क्या बताया था, मोर कुटी, यहाँ पर एक मोर आता है सुंदर इस चोटी पर और वो नृत्य करने लगता है, तो सखियाँ कहते देखो देखो कितना सुंदर मोर आया है, कितना सुंदर नृत्य कर रहे हैं, तो वो देखने को भी तैयार नहीं है। अरे बाबा कृष्ण का नहीं है वहां पर, चला गया वो, मैं मोर की बात कर रही हूँ, अभी तो कृष्ण को भी लेके बैठी हूँ, तो चले गए कभी, देखो ने देखने में क्या फर्क, देखो तो सही। तो फिर मुड़ के देखती है तो मोर को और उत्साह आता है, तो राधा रानी देख रही है तो और नाचने में उत्साह आता है, नाचने लगता है, नृत्य करने लगता है, बहुत सुंदर नृत्य करता है। फिर राधा रानी ऐसे बैठी है तो फिर ऐसे बैठ जाती है पूरा मुड़कर मोर की ओर, और बहुत चाव से देखने लगती है, और उसको पता भी लगता नहीं कि वो मोर के नृत्य में आनंद ले रही है, उसको क्रोध उसका अभिमान है वो नष्ट हो रहा है, लेकिन इतनी भाव विभोर हो जाती है, मोर बहुत ज्यादा प्रेम से नृत्य करने लगता है। नृत्य करते 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 और मोर आते हैं, वो भी जुड़ जाते हैं, फिर वहां से मोरनी आती है वो भी जुड़ जाती है, और दोनों मिलकर बहुत जोरदार नृत्य करते हैं, बहुत मोरों का समुदाय एकत्र होकर नृत्य करता है। उसके बाद में राधा रानी को इतनी प्रेरणा होती है, इतनी प्रेरणा होती है कि वो मोर को जाके ज्वाइन कर लेती है, तुरंत वहां से उठकर मोर के पास जाकर मोरनी जैसे नृत्य करने लगती है, वो मोर नृत्य कर रहा है और राधा रानी मोरनी की तरह नृत्य कर रही है, और बहुत देर तक ये नृत्य चलता है, और इतना आनंद राधा रानी को आता है कि वो भूल जाते कि वो किस लिए रुट गई थी। जब आखिर में वो दोनों मोर मिलकर पास पास में घूम घूम कर ऐसे गले मिलकर नृत्य करते हैं तो राधा रानी को पता चलता है ये मोर नहीं है, कृष्ण है। तो ललिता देवी ने कान में क्या कहा था कि जाओ तुम मोर बनो और मोर बनकर नृत्य करो, और नृत्य करो हो सकता है वो उसका मान समाप्त हो जाए, और वो जो आइडिया थी वो सफल हो गई। और तब तक जब तक वो गले मिलकर उन्होंने पोज दिया मोर मोरनी ने, तब तक तो क्रोध सब निकल गया था, मान समाप्त हो गया था। इस तरह से राधा रानी का मान कृष्ण ने भंग किया, मनाया उनको। तो ये जगह जो है मान मंदिर और मोर कुटी, ये संलग्न जगह है, यहाँ पर अनंत मोर लीलाएं होती रहती है, एक लीला नहीं है। जैसे एक बार राधा कृष्ण आए मान मंदिर पर, वो आते ही सुंदर हवा बहने लगी, और दोनों की जो है ना राधा रानी के उत्तरी वस्त्र क्या कहते हैं उसको, पहनते ना ऐसे चुन्नी कह सकते हैं, उनके उत्तर या दोनों ऐसे हवा में उड़ रहे हैं, ऐसे 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 हवा में उड़ रहे हैं आकाश। हवा आने से क्या हुआ, बादल इकट्ठा हो गए, बादल इकट्ठा हो गए तो हल्के हल्के उनकी गड़गड़ाहट शुरू हो गई, बहुत मधुर मधुर गड़गड़ाहट, मंद 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 गड़गड़ाहट, हल्की हल्की बूंदे गिरने लगी, सॉफ्ट ड्रॉप्स ऑफ वाटर। वो देखकर वहां पर मोर आ गए, उसने में कृष्ण ने मुरली उठाने के पहले राधा रानी ने अपने पैरों को बजाना शुरू किया, पेंजनिया उनको आवाज आई, फिर गोपियों ने मिलकर कंगन बजाना शुरू किया, है ना। तो कंगन की आवाज पायल की आवाज सुनकर कृष्ण को प्रेरणा हुई, उन्होंने मुरली उठाई मुरली बजाना शुरू किया, ये तीन वाद्य ने बहुत दिव्य संगीत वहां प्रकट किया। और फिर मोर आए, कृष्ण के मोर आए, राधा रानी के मोरनी आई, और बहुत सुंदर नृत्य हुआ। वो भी मोर मोरनी जैसा नृत्य करने लगे, बीच में सब गोपियां भी मोर मोरनी जैसे नाचने लगी और बहुत सुंदर मोरों का नृत्य वहां पर प्रकट हुआ। कई बार यहाँ पर कृष्ण आते हैं, अपने मोरों को लेकर आते हैं, राधा रानी मोरनियों को लेकर आते हैं और दोनों को प्रेरणा देकर नचाते हैं। मोर यहाँ से मोरों को प्रेरणा, वहां से मोरनियों को प्रेरणा और नृत्य होता है। कभी राधा रानी मोर और मोरनी का भेष बनाते हैं और नृत्य करते हैं, कभी स्वयं मोर और मोरनी बन जाते हैं और नृत्य करते हैं। ऐसे अलग अलग विविध विविध प्रकार के मोर मोरनियों के नृत्य यहाँ पर हमेशा चलते रहते हैं। तो ये मोर कुटी जो है ना, यहाँ पर एक बाबा थे बहुत पहले जो अंधे थे, बहुत सिद्ध बाबा थे, और उनका एक सिंह शिष्य था, उसके गले में झोली लटका कर वो सिंह शिष्य था ना, उनका सिंह लायन जाता था मानपुर में भिक्षा करने के लिए, और लोग जानते थे उससे, डरते नहीं थे उससे, वो तो संत शिष्य था, वैसा खूंखार सिंह नहीं था। उसके झोले में रोटी डालते थे तो चार घरों में जाकर रोटी की भिक्षा करके वापस मान मोरपिटी में आता था, और उसके बाबा उसका निकाल के भोग लगाते थे, खुद खाते थे, बची रोटी सिंह को देते थे, सिंह केवल रोटी खाता था, मांसाहार नहीं करता। देखो संतों के संग से क्या होता है, सिंह जैसा खूंखार जानवर भी संत बन जाता है, भक्त बन जाता है। इतना परिवर्तन केवल संत के संग से हो सकता है। इसलिए दुर्लभ मानव जन्म सत्संग करोहो एक भव सिंधु रे, इस भव सिंधु को पार करना है तो संतों का संग बहुत आवश्यक है। बिना संतों के संग से परिवर्तन नहीं हो सकता है। कोई ना कोई संत आपके संपर्क में होना चाहिए, जिसकी प्रेरणा आपको मिलनी चाहिए, जिसका संदेश आपको मिलना चाहिए, जिसका उपदेश आपको मिलना चाहिए और उसके ऊपर आपको जीवन चलना चाहिए। तो जब आप संतों से फिजिकली दूर भी रहेंगे और उनके आदेश को पालन करते रहेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित है। पॉजिटिव चेंज ट्रांसफॉर्मेशन इज फिक्स्ड, इज श्योर टू हैपन। तो एक संत के कृपा से सिंह भी संत बन गया, सिंह भी भक्त बन गया। तो उस अंधे भक्त के स्वप्न में राधा रानी आई और राधा रानी की कृपा से स्वप्न में उस अंधे बाबा को मोर लीला का दर्शन हुआ पूरा। जैसा मैंने बताया वो पूरा मन में प्रकट हो गया, अंतर चक्षु पटल पे प्रकट हो गया, इनसाइड दी प्लेटफॉर्म ऑफ द हार्ट, कोर्टयार्ड ऑफ द हार्ट। और वो अंधे ने बाहर से अंधा, लेकिन अंतर चक्षु उसके पूर्ण जागृत थे, पूर्ण दर्शन किया और वो लीला समाप्त हुई आखिरी पोज में, ऐसे राधा रानी ऐसे और कृष्ण ऐसे, ऐसे एक हार्ट बना दिया पूरा उन्होंने, अपने दोनों हाथों को मिलते हुए ऐसे एक हार्ट शेप बना दिया। वो चित्रपट सब जगह वृंदावन में फेमस है। आप चित्रपट की दुकान में जाओगे तो ऐसे बहुत मोर के चित्रपट मिलेंगे आपको, जिसमें राधा रानी मोरनी बनी हुई है, कृष्ण मोर बने हुए हैं और नृत्य कर रहे हैं और अपना जो पंख है वो पूरा फैलाया हुआ है और हाथ की तरह, और हाथ ऐसे हृदय के शेप में है। तो वो चित्रपट पर, वो दृश्य पर उनका स्वप्न समाप्त हो गया। तो आखिरी सीन था वो, तो राधा रानी ने दिखाया और बाद में कहा कि आपको ये चित्रपट बनाना है। तो अंधे बाबा ने कहा मैं तो अंधा हूं, मैं कैसे बनाऊं। उन्होंने कहा मैं आपको सिखाऊंगी कैसे बनाना है, मतलब एक तरह से बताया कि मेरी कृपा से आप बना सकते हो। तो राधा रानी की कृपा से अंधे बाबा ने अंधे होते हुए भी चित्रपट बनाया, वही लास्ट सीन वाला हार्ट शेप मोर और मोरनी का, बीच में कृष्ण मोर बने हुए हैं और बाजी में राधा रानी मोरनी बनी हुई है। और वो चित्रपट जो है आज भी मोर कुटी के मंदिर में उसी की पूजा की जाती है। जैसे हमारे ऑल्टर में राधा श्याम सुंदर जी हैं, वैसे उनके ऑल्टर में वो मोर मोरनी का चित्रपट है, इंटरनेट भी है वो चित्रपट, हम देख सकते हैं उसको, मोर कुटी में जाके भी देख सकते हैं। बहुत सुंदर उसको वस्त्र पहनाते हैं, गर्मी में गर्म कपड़े पहनाते हैं, सुंदर पुष्पहार करते हैं। तो वो जो सीन है मोरनी मोर मोरनी का, वही वहां का ऑल्टर है, वेदी पर वही बिठाया गया है। जैसे मोर कुटी ऊपर है यहाँ पर, ये ग्यावर कुंड है। तो यहाँ पर अनंत लीला है भगवान की, बहुत सुंदर सुंदर लीला है। लेकिन कहने का तात्पर्य मूल ये है कि प्रभुपाद जी आज बहुत सुंदर बता रहे थे कि राधा कृष्ण की जो सुंदर लीलाएं हैं ये मनोरंजन के लिए नहीं है। मनोरंजन हो जाएगा आपको, दुख हरण हो जाएगा, मन बहल जाएगा, दुखी मन आनंदी हो जाएगा, दुखी मन को सुख प्राप्त हो जाएगा, ये सब सही है। लेकिन केवल दुखी मन को सुखी बनाने के लिए, मन को मनोरंजन करने के लिए लीलाओं का प्रयोजन नहीं है। they are not meant for amusing you or entertaining you. They may entertain you also, but they may not, they are not meant for entertainment. वो आपके हृदय की शुद्धि के लिए कहा गया है, आपके हृदय की शुद्धि के लिए उनका प्रयोजन है. द पर्पज इज टू प्योरीफाई द हार्ट. लेकिन हो सकता है अगर हमारा दिल शुद्ध नहीं है और हम लोग ये लीला सुनते हैं तो और हमारे मन में काम वासना जागरूक हो सकती है, हमारे अंदर छुपी हुई काम वासना प्रज्वलित हो सकती है. मेक इट यू नो बर्निंग लाइक रेज फायर. तो इसलिए साधक को कृष्ण लीला का आनंद लेना है तो उसको साधना बहुत अच्छी करनी चाहिए. जब हरि नाम का जप हम लोग दिल से करते हैं, गुरु के द्वारा दिए हुए आदेश को हृदय से पालन करते हैं, मन से सोलह माला करते हैं, मन लगातार करते हैं, यहाँ वहाँ भटकते नहीं हैं, तो सोलह माला का जप करते हैं, चार नियमों का पालन करते हैं. प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक मांसाहार अभक्ष भक्षण जो नहीं खाना है वो छोड़ नहीं सकते हम लोग, जब तक हम लोग व्यभिचार नहीं छोड़ते हैं, शरीर से और मन से को त्याग नहीं करते हैं. क्योंकि शरीर से छोड़ दिया, मन में अभी लड्डू फूट रहे हैं हमारे, वो नहीं छोड़ते हम लोग. जब तक नशा नहीं कर छोड़ते हैं, जुआ नहीं कर छोड़ते हैं, मनोकल्पना करने का आदत नहीं छोड़ते हैं, तो कहते हैं मनुष्य नहीं बनते हम लोग. चार नियम पालन नहीं करेंगे तो मनुष्य भी नहीं बनते, चार नियम पालन करने के बाद मनुष्य बनते. झूठ न बोलना बंद कर देते हैं, विश्वासघात किसी का करना बंद कर देते हैं, तब मनुष्य होने का आरंभ होता है. और मनुष्य होने के बाद में भक्ति है, मनुष्य होने के बाद में भगवान के नाम का जप है. उसके पहले अगर जप करेंगे तो फिर वो पानी में जाएगा पूरा. इधर अग्नि जला रहे हैं वहां से पानी भेज रहे हैं तो अग्नि जलेगी नहीं, कोशिश तो जारी है. जब तक पानी फेंकना बंद करेंगे तो फिर अग्नि जलेगी नहीं. उस तरह से चार नियम पालन करने के पश्चात जब भगवान के नाम का जप करेंगे, गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, तो हृदय स्वच्छ होने लगेगा, पापों की राशि समाप्त होने लगेगी, द स्टॉक ऑफ सिंस विल गेट बर्न. और उस अवस्था में कृष्ण लीला का स्वाद हमको आएगा. जब तक मन के अंदर इंद्रिय भोग की इच्छाओं को हम छोड़ नहीं सकते तब तक कृष्ण लीला का, राधा रानी की लीला का स्वाद हमारे मन में निर्माण नहीं हो सकता. एक जगह विषय भोग, एक जगह पर कृष्ण, ये दोनों एक साथ में चलने वाला नहीं है. एक निर्णय देना पड़ेगा आपको, या तो कृष्ण चाहिए या तो माया चाहिए. और जहां कृष्ण तहां नहीं माया रदिका, जब कृष्ण है तो माया का कोई प्रभाव नहीं है. तो माया को पकड़ लिया है तो कृष्ण हमारे दृष्टि से ओझल हो जाते हैं, होने पर भी ओझल हो जाते हैं. चॉइस हमारा है. और जब हम हृदय से कृष्ण को चॉइस करते हैं तो फिर माया हमको छोड़ सकती है. यानी कि माया को हमको ही छोड़ना है, ऐसा नहीं कि माया हमको पकड़ के रखी है. माया आपको तब झपट के पकड़ती है जब आप कृष्ण को भूलकर भोग वांछा करते हैं, भोग की इच्छा करते हैं, तब जाकर माया हमको झपटती है. तो माया से छुटकारा पाए बिना जन्म मृत्यु के चक्र से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं. प्रभुपाद जी बताते हैं कि इमोर्टैलिटी इज अ नेचुरल फिनोमिनन. सब लोग अमर होना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता. तो अमर होने की इच्छा, मृत्यु को प्राप्त न करने की इच्छा, ये स्वाभाविक है, ऐसे बोलते हैं. इट्स नेचुरल टू हैव डिजायर टू बिकम इमोर्टल. लेकिन इमोर्टल अमर बनने के लिए कुछ तपस्या करनी पड़ेगी, कुछ नियम पालन करने पड़ेंगे. आप में से बहुत लोग डॉक्टर हैं तो ऐसे बैठे बैठे डॉक्टर नहीं बनेंगे. बहुत सारा मेहनत किया उसके लिए, बहुत सारा प्रोसीजर फॉलो किया है, बहुत कष्ट किया है, बहुत पढ़ाई की है, बहुत प्रैक्टिस किया है, दिन रात नींद खोकर काम किया है, उसके बाद डॉक्टर बने, उसके बाद में फिर आगे का जीवन समृद्धि आ गई है. तो ऐसे अपने आप कुछ नहीं होता है, अपने आप में कविता भी नहीं होती, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है. तो सारांश में रूपा जी क्या बता रहे थे कि जब हम सिंसियरली उनके द्वारा दी गई साधना का पालन करते हैं, नियम का पालन करते हैं, वो तपस्या करते हैं, तब हृदय स्वच्छ होता है. फिर स्वच्छ हृदय में ही कृष्ण बस सकते हैं, गंदगी में कृष्ण नहीं बस सकते हैं. होने पर भी हृदय में वो अप्रकट रहते हैं. जब हृदय शुद्ध होता है तो वहां पर बसे हुए भगवान प्रकट होने लगते हैं, और प्रकट होंगे तब उनके प्रति आकर्षण होगा, उनके प्रति अट्रैक्शन होगा, स्वाद निर्माण होगा, रुचि निर्माण होगी, आसक्ति निर्माण होगी, तब उनके प्रेम और भाव की जागृति होगी. और ये सब प्रेम की लीलाएं हैं. अगर हमारा हृदय शुद्ध नहीं है तो ये मनोरंजन के स्तर पर रुक जाएगा, इट विल एंड एट द लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट, और कुछ नहीं होगा. तो वैसे हमारे भोग की इच्छाएं चलती रहेंगी. लेकिन जब हमारा हृदय शुद्ध होगा गुरु की आज्ञा पालन करके, तब जाकर ये स्वाद आएगा और उन लीलाओं का जो प्रयोजन है टू प्योरिफाई योर हार्ट कंप्लीटली एंड टू गिव यू लव एंड डिवोशन, जो प्रेम और भक्ति दिलाने का जो उद्देश्य है भगवान की लीला का, वो परिपूर्ण हो जाएगा, वो संपन्न हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, इन प्रेम लीलाओं का उद्देश्य है कि आपके हृदय में वो प्रेम बसे, आपके हृदय में वो भक्ति बसे, भाव बसे प्रेम का और प्रेम भक्ति का। वो बसने के लिए लीलाओं का प्रयोजन, भगवान लीला करते ही इसके लिए है। उनमें और उनके लीला में कोई अंतर नहीं है, उनकी लीला और वो स्वयं एक ही है, यहां तक कि उनका नाम उनके जैसा ही है, एक रूप है उनका, लीला कथा उनकी जैसी उनकी जैसी है, उनका धाम उनसे अभिन्न है और उनका रूप भी उनसे अभिन्न है। और कहते हैं कि उनका वो स्वयं और उनकी लीला, इसमें ज्यादा कृपालु कौन है, उनकी लीला ज्यादा कृपालु है, उनसे ज्यादा दयालु है, भगवान से भी उनकी लीला अधिक दयालु है, भगवान से भी अधिक उनका धाम दयालु है, भगवान से भी अधिक उनकी उनका रूप दयालु है, भगवान से अधिक उनका नाम दयालु है। एक बार भगवान माफ नहीं करेंगे, लेकिन उनका नाम जप करने से माफी प्राप्त होगी, अपराध भंजन हो जाएगा। तो ये लीलाओं का प्रयोजन है कि हमें वो प्रेम भक्ति प्रदान करेंगे। लेकिन तो बोलते हैं डॉक्टर, कैसे बोलते हैं ये गोली खाओगे तो ठीक हो जाओगे, दिन में 3 बार खाओ 5 दिन में ठीक हो जाओगे, लेकिन साथ में आपको ठंडा पानी नहीं खाना है, आइसक्रीम नहीं पीना है, तली हुई चीज नहीं खाना है, वो परहेज कहते हैं उसको, है ना। और अब ये सब करते रहेंगे तो दवाई का असर नहीं होगा आपके ऊपर, दवाई देने के बाद भी दवाई का असर नहीं होगा, क्योंकि परहेज बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल्स एंड रेगुलेशन। उसी तरह से भगवान की लीला का श्रवण करेंगे और इंद्रिय भोग का भी हृदय में परवरिश करेंगे तो भगवान की लीला का परिणाम नहीं होगा, इट विल अपीयर टू बी यूजलेस, पर वो यूजलेस नहीं है, हम लोग उसको यूजलेस बना रहे हैं अपने इच्छा से और अपने काम से। तो इसलिए सब लोग ना जबर कुंड में बैठे हो ना परम भाग्य, देखो इतना सुंदर दृश्य है, ये ऐसे ही कुछ दृश्य गौलोक में होता है। हम लोग ने तो तेल के दीपक लगाए हैं, गौलोक में घाट जो है वो मणि कंचन रत्नों से बने हुए हैं, उनको दीपक लगाकर चमकाने की जरूरत नहीं है, अपने आप में वो हमेशा दैदीप्यमान तेजस्वी चमकते रहते हैं। हर एक कुंड का कोना रत्नों से बना हुआ है। तो ये दिव्य दर्शन कुछ कुछ हद पर आपको यहां पर भी प्राप्त है। हो सकता है कि कुछ समय तक इसका असर रहेगा, फिर मुंबई में जाके फंस जाएंगे पूरे, उसका असर जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर अगली बार आके फिर याद करेंगे, अरे क्या देखा था। लेकिन तो प्रार्थना करना कि भगवान की कृपा हमें मिले, भगवान के विषय में आकर्षण बढ़े, भगवान की कृपा से हमारा हृदय शुद्ध हो जाए और ये जो हम देख रहे हैं वो हमारे हृदय में बसा रहे और कोई चीज ना बसे, ना भौतिक वस्तुओं का आकर्षण, काम वासनाओं का आकर्षण वो ना बसे, और बार बार यही हृदय में याद आए, स्वप्न में भी वही याद आए, सोते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण की स्वप्न गिरे, कृष्ण के धाम का सपना है। तो इसलिए हम लोग, आपने रखी हुई शांति की जय, हरे कृष्णा। तो प्रार्थना का समय है, बहुत संध्या काल सुंदर समय है, जहां पर भगवान के नाम, भगवान के लिए दीपक जलाते हैं। हमारी संस्कृति में संध्या काल में संध्या आरती होती है और हम लोग दीपक जलाकर भगवान का पूजन करते हैं, ताकि ये समय बहुत ही भक्ति के लिए अनुकूल होता है। सवेरे का समय ब्रह्म मुहूर्त का, संध्या का समय दोपहर का समय, ये समय जो है भगवान के साथ जुड़ने के लिए बहुत अनुकूल होता है। और यहाँ पर जो शांति, परम शांति का अनुभव आपको मिल रहा है वो कहाँ मिल सकता है। शहर के शोर के बीच में हम रहते हैं, बहुत सारी उछल पुछल मन में चलती रहती है, ये चाहिए वो चाहिए, जो नहीं चाहिए वो भी चाहिए, जो नहीं है वो चाहिए, जो खो गया उसमें रोते रहते हैं कि क्यों नहीं था मेरे पास। ये तो यहाँ की जो स्थिति है वो आत्मा के लिए स्वाभाविक है, मोस्ट नेचुरल सिचुएशन। इसमें आत्मा का जो मूल गुण है प्रेम और भक्ति का, वो अपने आप स्वतः जागरूक होता है। धाम में हम क्यों आते हैं, बम्बई में भी इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन ये स्थिति जो है ना वो बम्बई में पैदा नहीं कर सकते हैं। और जब स्थिति ही नहीं है तो मनस्थिति कैसे बनेगी? जैसी है स्थिति वैसे बनेगी मनस्थिति, और वैसे आप कार्य करेंगे जैसे मनस्थिति आपकी बनेगी, जैसे प्रवृत्ति बनेगी। तो इसलिए हम सब कुछ छोड़कर कुछ दिन के धाम में आते हैं और आत्मा को एक स्वाभाविक वातावरण का अनुभव दिलाने का प्रयास करते हैं। तो आत्मा के अंदर जो स्वाभाविक गुण है भगवान के प्रेम भक्ति के, तो यहाँ पर अपने आप प्रकट हो जाते हैं। दे मैनिफेस्ट डिवाइन क्वालिटीज ऑफ सोल, दे मैनिफेस्ट इन दिस फेवरेबल एटमोसफियर। और हम भी उसमें कुछ प्रयास करके दीपक जलाकर कोशिश करते हैं कि और उसमें और स्वाभाविकता आ जाए और दिव्यता आ जाए, उस दिव्यता के आधार पर मन के अंदर की जो भावनाएं हैं वो प्रकट हो जाए। तो सब लोग राधारानी से प्रार्थना करो कि वह आपके चरणों में शरण लेने के लिए आए हैं, हम अपनी आत्मा को पहचानने के लिए आए हैं कि हम कौन हैं, हम आपके सेवक हैं। और आपके सेवक की ये जानकर हम आपके चरणों में अपने आप को शरणागति स्वीकार करने के लिए आए हैं, अपने आप को समर्पित करने के लिए आए हैं। प्रार्थना से बहुत काम हो जाता है, जब हृदय से प्रार्थना होती है ना तो बहुत कुछ हासिल हो जाता है। आप लोग इस दिव्य स्थिति में बैठे हो, आंख बंद करके राधा रानी से प्रार्थना करो कि हमें अपना बना लो, आपके विषय में हमको रुचि उत्पन्न हो, आपके नाम में आपकी लीलाओं में हमें दिल लगे, कि दुनिया की जो कहानी है उससे हमारा दिल हट जाए, दिल उठ जाए हमारा, और आपके विषय में आपके नाम में आपके धाम में आपके लीला में हमारा मन लगे। इसलिए सब छोड़कर धाम में आते हैं और आना भी इसलिए चाहिए, नियमित रूप से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा बरसाना हो गया अभी हम अगली बार, एक बार हो गया हमारा, ऐसे जाने की जरूरत नहीं, बार बार आना चाहिए। क्योंकि हर बार आएंगे, हर बार नाम का जप करके आएंगे, साधना करके आएंगे और थोड़ा हृदय शुद्ध होगा तो और धाम आपको और अपना गौरव प्रकट करेगा और गहराइयों में रहस्य आपके लिए प्रकट होंगे। हर बार नए नए रौनक आपको दिखाई पड़ेगी, हर बार नया अनुभव देंगे, क्योंकि आप आगे बढ़कर आएंगे ना और शुद्ध होकर प्रवेश करेंगे अगली बार। आज जितने शुद्ध, अगले वर्ष साल और शुद्ध होकर आएंगे जब करेंगे साल भर। तो जितनी आपकी मन की स्थिति है उतना आपको प्रकट किया जाएगा, जितना मन आपका शुद्ध हो जाएगा, जितना मन का पात्र बड़ा हो जाएगा उतनी और कृपा उसमें भरेगी। इसलिए एक बार आके काम नहीं चलेगा, बार बार अनंत बार आना पड़ेगा, लगातार आना पड़ेगा, इस धाम से प्रेम निर्माण करना पड़ेगा। तो धाम जो है वो भी व्यक्ति है, धाम जितनी आप साधना करते हैं भजन करते हैं उतना गौरव धाम प्रकट करता है। और धाम में आकर जब हम पाप करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, कुछ दोषपूर्ण काम करते हैं, धाम अपने गौरव को छुपा लेता है। धाम कंसील्स इट्स ग्लोरीज व्हेन देयर आर सिनफुल एक्टिविटीज। और जब धाम तो धाम में जब हम साधना करते हैं तो फिर धाम अपना गौरव और अधिक और अधिक और अधिक प्रकट करता है। इसलिए जब धाम हम निवास करते हैं तो एक ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर हमको केवल पवित्र कार्य करना है, सेवा कार्य करना है। अगर हम साधना कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, साधना के साथ साथ में सेवा भी होनी चाहिए। सेवा हमारे लिए सबसे सिक्योरिटी का सबसे स्पिरिचुअल जो सिक्योरिटी है वो सेवा है। सेवा के माध्यम से हम कृष्ण से और राधा रानी से निश्चित रूप से जुड़े रहते हैं। इट्स 100% गारंटी कनेक्शन विद द लॉर्ड। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस चेतना को तैयार करेंगे। यहाँ पर जो चेतना निर्माण होती है वो बम्बई में निर्माण नहीं होती, यहाँ पर निर्माण हो रही है। तो प्रार्थना कीजिए कि हमारी चेतना और शुद्ध हो जाए और कृपा और कृपा और कृपा निर्माण हो जाए। यहाँ के बाजू में दो और कुंड है, उसका नाम बिहार कुंड है और दोहनी कुंड है। तो बिहार कुंड में शंकर जी महाराज आए थे और शंकर जी महाराज ने यहाँ पर सखी बनकर राधा रानी को पुकारने के लिए तैयारी करने का प्रयास किया था। सखी बनकर जब प्रयास कर रहे थे तो सखी बनना और श्रृंगार करना उनको नहीं हो रहा था, तो गौरी जी प्रकट हो गई और गौरी जी आई तो गौरी जी का गौर तेज प्रकट हो गया, इसलिए उसका नाम पड़ा गौरी कुंड। बिहार कुंड भी नाम है, गौरी कुंड भी है, भगवान की बिहार स्थली है वो। तो गौरी जी ने आकर फिर कहा है कि आप पुरुषों को स्त्री का श्रृंगार कैसे आएगा, वो हम ही करेंगे। तो गौरी जी ने बड़े प्रेम से महादेव जी का श्रृंगार किया है, सती बनाए उनको, सुंदर श्रृंगार करके फिर उनको भेजा है, और स्वयं भी उनके पीछे पीछे राधा रानी को पुकारने के लिए गई है। राधे, जय जय श्री राधे। तो बिहार कुंड में महादेव जी का श्रृंगार गौरी जी के यहाँ है, धोनी कुंड पे राधा रानी की जितनी गायें हैं विष्णु महाराज के पास, उनका दोहन करते हैं, मिल्किंग काउस, और कुंड में उनका दूध इकट्ठा करते हैं। वहां पर कृष्ण एक बार आए, उन्होंने राधा रानी के गाय का दोहन किया है, और बीच में अचानक वो उसकी पिचकारी दूध की राधा रानी के मुंह पर मारी, और धोनी कुंड की लीला है। उसके आगे डबारा गांव है, डबारा गांव रंग देवी का गांव है, तो वहां पर रत्न कुंड है, और हो सकेगा तो हम आपको वहां ले जाएंगे। वहां पर राधा रानी ने, इसको यहाँ से ले जाओ, शराब की बोरी, चलो उठो यहाँ से, उधर बैठो, तो रंग देवी का विला गांव जो है, वहां पर राधा रानी ने जो मोती भेजे गए नंदगांव से, उसकी खेती करके रत्न बनाए। He planted the pearls and grew diamonds over there. वहां पर श्याम जी, श्याम सुंदर जी वहां जाते हैं, और वो रत्न कुंड जहाँ बना हुआ है, उस रत्न कुंड में राधा रानी अपने सहेलों के साथ स्नान करती है, तो वहां पर दूर में शिला में बैठते हैं ऊंचाई में, और मुरली बजाते हैं और उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। तो जिस शिला पर श्याम सुंदर जी बैठते हैं, वो शिला भी श्याम हो गई है, उसका नाम है श्याम शिला, उसका भी सुंदर दर्शन वहां पर है। और डबारे गांव का एक वैशिष्ट्य है कि वहां पर गुड्डा गुड्डी का खेल राधा रानी और श्याम सुंदर खेलते हैं, अपनी मैया बाबा से उधर गुड्डा गुड्डी प्राप्त करते हैं, वहां पर आकर बहुत सारे खेल खेलते हैं, और अपने गुड्डा गुड्डी का शादी भी करते हैं। जावला बहुत सुंदर गाँव है। डबारा, डबारों का मतलब है इमोशनल एक्सटेसी, डबारो यानी भाव विभोर होना, भाव विभोरता का नाम डबारा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ की कथा परम पूज्य रमेश बाबा जी महाराज और राधानाथ महाराज जी का उल्लेख किए बिना पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि परंतु जो राधानाथ महाराज जी रिचर्ड स्लाविन थे, तो अपने आध्यात्मिक खोज के रास्ते में अंतिम स्थान उनका यही है। राधा रानी के मंदिर से वो चलकर मान मंदिर में आए थे, यहाँ पर उन्होंने 6 महीने निवास किया है। ऊपर रमेश बाबा जी महाराज, सखी शरण बाबा जी महाराज, हमारे महाराज और एक प्रकाश सिंह रहते थे, जो बहुत वृद्ध हो गए हैं प्रकाश सिंह जी, और ऊपर से नीचे उतरकर मानपुर में भिक्षा करते थे, और ऊपर जाकर वो भिक्षा को वहाँ पर वितरित करते थे। फिर रिचर्ड स्लाविन राधानंद महाराज जी नीचे आकर जल लेकर ऊपर जाते थे बाल्टी में लेकर, उसी में अपना काम चलाते थे। और रमेश बाबा जी महाराज के संग में उन्होंने बहुत अद्भुत दिव्य अनुभव प्राप्त किए, और जिसकी खोज उनके जीवन में थी वो यहाँ पर उनको प्राप्त हुआ। रमेश बाबा जी की भी बहुत लीलाएं यहाँ पर है। ये सब जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना यहाँ पर, इतना सुंदर वातावरण उन्होंने सवारा हुआ है, सब यहाँ जीर्ण छिन्न था। मान मंदिर डाकुओं का अड्डा था जब वो 75 साल पहले आए थे यहाँ पर, बहुत साल हो गए, 1952 में आए थे, कितने हो गए 48 और 20 साल कितने होते हैं, 68 साल हो गए। और तब यहाँ डाकुओं का अड्डा था, डाकू लोग अपना चुराया हुआ माल यहाँ छुपाते थे, उसमें से उन्होंने इतना डेवलप किया, उसका विकास किया है। डाकुओं ने बंदूक चलाई, बंदूक दिखाई उनको कि गोली से मार देंगे, चले जाओ यहाँ से, तो उन्होंने वहां पर एक सुंदर वाक्य उनको कहा था कि हम तो यहाँ मरने के लिए आए हैं, मरना तो मार दो, तो मरने के लिए आए, सबसे डर किसको दे सकते हैं, हम हर किसी व्यक्ति को मृत्यु का डर दिखा सकते, मार डालेंगे आपको, लेकिन मार डालने जाने से भी और कोई डरता नहीं है तो और क्या करेंगे उसके लिए। तो डाकू लोग चले गए, महाराज जी वही रहे, और तीर्थ स्थान बना, डाकुओं का स्थान था जिसमें सारा गौरव अप्रकट था। और संत ने यहाँ पर भजन किया कष्टों को सहते हुए। तो आज मान मंदिर का पूरा गौरव जो है, जो लीला शक्ति है, वो पूरी प्रकट हो गई है। और वहां पर हम मान मंदिर में जाकर वो राधा रानी के तेज और लीला का अनुभव करते हैं। संत जब तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, तो उस स्थान का गौरव जो है आम जनता के लिए प्रकट हो जाता है। जो दुबा के रखा हुआ है वो खुल जाता है। तो जो घर जो है जहाँ पर हम लोग अभी प्रसाद पाएंगे, उधर भी हमारे महाराज जी ने कई बार प्रसाद पाया है उन 6 महीनों में। उनका उनका तबका घनिष्ठ परिचय है। जब उनके घर के लोग जब उस समय थे 71 में, तो 5 और 10 साल के थे। अभी वो सब बुजुर्ग हो गए हैं, 70-75 साल के हो गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे गुरुदेव को भी आध्यात्मिक साक्षात्कार इस जगह से प्राप्त हुआ है। तो जब जब आध्यात्मिक साक्षात्कार यहाँ प्राप्त हुए और फिर वहां से निकले, तब उसके बाद जाकर उन्होंने प्रभुपाद से दीक्षा ली है। प्रभुपाद जी महाराज की शरण ली है, उनका अनुग्रह प्राप्त किया है और उनके जीवन समर्पित किया है। उनकी खोज जो है वो यहाँ पूर्ण हुई। और फिर उसके बाद में आप जो है वो देख रहे हैं, जब यहाँ से जा रहे थे तो यहाँ पर प्राप्त हुए साक्षात्कार के कारण, बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल रियलाइजेशन दैट वर मेड अवेलेबल टू हिम हियर, ही फेल्ट दैट आई शुड रेसिप्रोकेट विद बरसाना। कुछ बरसाना के लिए मैं करना चाहता हूँ। तो इसी भाव से हमारा बरसाना कैंप शुरू हो गया है। राधानाथ महाराज की जो कृतज्ञता जो है वो इस बरसाना आई कैंप के माध्यम से प्रकट हुई है। और आगे जो विस्तार होगा, अस्पताल बनेगा, वो भी उन्होंने जो इच्छा प्रकट की थी कि मुझे जो दिव्य साक्षात्कार यहाँ प्राप्त हुआ है उसके प्रतिसाद में, उसके रिस्पॉन्स में मुझे यहाँ पर कुछ सेवा करनी है, ठोस सेवा करनी है, समथिंग कंसोलिडेटेड, समथिंग विच इज कॉन्क्रीट। तो आज जो भी कुछ आप देख रहे हो वो सब उन्होंने जो कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रयास किया था, वो कृतज्ञता का परिणाम आज हम देख रहे हैं। आज यहाँ पर जो दीपक भी लगाए गए हैं, जो कुछ आपको अनुभव हो रहा है, वो उन्होंने जो कृतज्ञता व्यक्त करने का निर्णय लिया था, वॉट एवर ही डिजायर टू एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड टू सम सर्विस, बिकॉज ऑफ दैट ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग। हम उनके बोए हुए बीज के द्वारा जो वृक्ष तैयार हो गया है उसकी छत्रछाया में हम बैठे हुए हैं। संत जब कुछ इच्छा करता है तो उसकी इच्छा भगवान पूर्ण कर देते हैं। हम तो संत नहीं है, लेकिन संत की छत्रछाया में होंगे तो उनकी कृपा से सब दिव्य चीजें प्रकट होंगी। जो हमको आश्चर्य लगता है, इम्पॉसिबल लगता है, वो भी संत की कृपा से प्रकट हो जाता है। इसलिए हम उस प्रार्थना पर भरोसा करते हैं, जो नामुमकिन चीज है वो भी संत की कृपा से मुमकिन हो जाती है। जैसे हम सब बालक थे तो मेडिकल कैंप गांव गांव में करते थे, तो 200-400 रुपए हमारी तनख्वाह थी उस समय, उसमें से हम पैसे निकालकर कैंप करते थे। तो उस समय 15 करोड़ का अस्पताल तो नामुमकिन था हमारे लिए, लेकिन राधा रानी और गुरु महाराज की कृपा से वो अस्पताल बन गया। आज भी आश्चर्य लगता है, अरे ये तो नामुमकिन था, हमारे बस में तो था नहीं, लेकिन संत की कृपा से वो प्रकट हो गया। तो जिस तरह से वो प्रकट हो गया है नामुमकिन चीज, उस तरह से हमको पूर्ण विश्वास है कि बरसाने में भी अस्पताल प्रकट होगा। कमी केवल प्रार्थना की है, इच्छा की तीव्रता की है, कमिटमेंट की है। हम सब लोग आपसे विनती करते हैं कि आप लोग गैबर कुंड में इस सुंदर समय पर दीपों के प्रकाश में बैठते हुए, भक्तों के संग में बैठते हुए, मान मंदिर के सानिध्य में, रसकुंड के सानिध्य में, मोरकुटी के सानिध्य में बैठकर आप प्रार्थना कीजिए। अभी जो हम कीर्तन करेंगे उसमें भी प्रार्थना कीजिए कि हमारे लिए सेवा का मौका और यहाँ पर प्रकट हो जाए। वी वॉन्ट टू डेवलप मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर सर्विस फॉर ऑल द जनरेशन टू कम। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा सेवा की बनाना चाहते हैं, जिससे राधा रानी की कृपा से बहुत सारे जीव जुड़ सकते हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन का उद्धार हो सकता है, उनके आध्यात्मिक जीवन का उद्धार हो सकता है, जिनको वो सेवा दे रहे हैं उनका कल्याण हो सकता है, और सामूहिक कल्याण भी हमारा हो सकता है, वैश्विक कल्याण भी हो सकता है। ऑल लेवल्स ऑफ मर्सी विल बी अवेलेबल। और ये सुंदर समय पर अभी हम कृष्णा कीर्तन करना आरंभ करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।